मेरे अजीज नौजवान साथियों नमस्कार। आज 8 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 मार्च से 25 मार्च 2018 के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं शब्बीर अहमद, आप अलवर मनका राजस्थान से हैं, ज्योति आप घासोला भिवानी हरियाणा से हैं, विवेक पुष्पम आप खगरिया बिहार से हैं, शुभम उपाध्याय आप इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और सोमेश मेम्ब्रोम आप पाकुर झारखंड से हैं। तो शब्बीर, ज्योति, विवेक, शुभम और सोमेश आप पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों एक बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं कि इन बीच के दिनों में डेफिनेटली मैंने आप सबको बहुत ज्यादा मिस किया है और एक अच्छी बात है कि कम से कम आपने उतना मिस नहीं किया, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं हर अपने सिस्टम के तहत आपको डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं और ऐसा मैंने किया भी। और खासकर जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस बीच में जो एक एक टॉपिक को लेकर हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में आप सबकी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट का तो ये कहना था कि सर इसी पैटर्न को क्यों ना अपनाया जाए, क्योंकि हमें एक टॉपिक पर बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है, हमारा वो टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाता है, अच्छी समझ भी डेवलप हो जाती है। और मजेदार बात तो यह है कि इन 11 टॉपिक्स में से एक टॉपिक मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने नदियों को जोड़ने के बारे में उपलब्ध कराया था और जिस पैटर्न पर मैंने वो आप लोगों को दिया था लगभग उसी पैटर्न पर मेंस में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो चलिए ये तो मेरे लिए बहुत आप संतोष की बात है कि वह प्रश्न ज्यों का त्यों आ गया। लेकिन जो दूसरे टॉपिक्स भी प्रोवाइड किए गए हैं वो सच पूछे तो श्रेणी वही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा जादू कर देंगे कि जो भी आप कहेंगे वही पूछ लिया जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी इससे थोड़ा सा विश्वास तो बढ़ता ही है आप सबका मेरे ऊपर भी, और सबसे बड़ी बात है मेरा स्वयं के ऊपर भी कि हाँ जो चयन हो रहे हैं, जिन विषयों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो सही है, और साथ ही साथ उन विषयों को जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं, यानी कि उन विषयों के बारे में जो बातें बताई जा रही हैं वो एग्जामिनेशन के लिए परफेक्ट होती हैं और बहुत अच्छी भी होती हैं। तो मित्रों आप सबके इस विचार के लिए मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हाँ अब मैं एक काम जरूर करने जा रहा हूं, वो यह फ्रेंड्स की जो हमारा डेली ऑडियो लेक्चर का जो पैटर्न है देखिए वो तो वही रहेगा, क्योंकि हम करंट अफेयर्स को छोड़ नहीं सकते। करंट अफेयर्स को छोड़ने का मतलब है कि हम एक बड़ी चीज को छोड़कर एक छोटी चीज पर जा रहे हैं, यानी कि करंट अफेयर्स को छोड़कर अगर हम एक ही टॉपिक पर बात करने लगे तो वह बड़ी चीज को छोड़ना होगा और बदले में एक छोटी चीज को ही हासिल करना होगा। लेकिन हाँ हम एक काम जरूर कर सकते हैं जो मैं आगे चल करके करूंगा, यूं कह लीजिए कि करने की मैंने शुरुआत ही कर दी है कि वो जो छोटी चीजें हैं, यानी कि जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, मेरी कोशिश होगी कि उसे अब मैं थोड़ा सा अधिक समय दूं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा कम विश्लेषित करूं, उनको थोड़ा सा कम समय दूं और जो एक टॉपिक है उसे ज्यादा समय दूं और उसके बारे में एक अलग नजरिए से आपसे बात करूं, ताकि सीधे मेंस में आपके वो काम आ सके, प्री में काम आ सके, यहां तक इंटरव्यू में आपके काम आ सके और आपके दिमाग में कम से कम एक टॉपिक की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो आ ही जाए। तो इतना फायदा मुझे आप लोगों के मेल से हुआ है और इनफैक्ट सच पूछे लगातार आपके मेल से मुझे फायदा होता है, मतलब आपके मेल मुझे ड्राइव करते हैं, मुझे कहां जाना है कैसे जाना है ये सब बताते हैं। इसीलिए मित्रों मैं आप लोगों के मेल जो भी आते हैं सब खुद भी पढ़ता हूं, हमारा स्टाफ भी जो भी असाइन किया है वो पढ़ता है, एक एक मेल के जवाब देने की कोशिश होती है और मैं बकायदे उसमें से नोट्स लेता हूं, पॉइंट्स नोट करता हूं ताकि आगे मेरा उस तरह से रास्ता बन सके और मैं आप लोगों के स्वयं को और अधिक लायक बना सकूं। तो मित्रों, इस सब के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हम इसी के तहत जिस मुख्य विषय के को लेकर के बात करेंगे वो है न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, है ना। हाँ, ये जरूर है कि इसके तहत हम लोग जो भी विषय लेंगे उनका संबंध करंट से होगा, समसामयिक घटनाओं से होगा, और साथ ही साथ अगर जरूरत महसूस हुई तो दूसरे विषय को भी जो समसामयिक से दूर के हैं उन्हें भी इसमें हम लोग लेकर के चलेंगे। डिपेंड करेगा, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, राइट। आइए अब हम आते हैं न्यूज पर। आज के न्यूज में इनफैक्ट एक अच्छी बात यह है कि कोई खास न्यूज नहीं है। आप लोगों ने न्यूज सुनी ही है फ्रेंड्स, नोटबंदी का आज जो की वर्षगांठ आप कह लीजिए मनाई जा रही, साल भर पहले आज ही की तारीख के दिन डिमोनेटाइजेशन लागू किया गया था। तो अखबार में भी आप देखेंगे कि नोटबंदी से क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, इनकी काफी जानकारियां दी गई हैं, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी आ रहे हैं, चैनल्स पर भी इस पर काफी चर्चा होगी। तो आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि अब ये विषय इतने लंबे समय से चर्चा में है कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले एग्जामिनेशन की दृष्टि से अब ये कोई बहुत महत्वपूर्ण रह गया है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण नहीं रह गया है तो आप इसे छोड़ ही देंगे। आप बकायदे न्यूज सुने, आप अखबारों में जो आ रहा है उसे थोड़ा सा पढ़ें भी, क्योंकि इससे क्या है कि जो लेटेस्ट आंकड़े जो आपको मिलेंगे, आंकड़े का मतलब है कि कितने बैंक अकाउंट्स पर अब सरकार की नजर है, इसके कारण काले धन पर किस तरह का नियंत्रण हुआ है, आगे चलकर के डिमोनेटाइजेशन के क्या क्या फायदे होने की संभावनाएं हैं, इसे क्या क्या नुकसान हुआ है, और सच पूछिए तो क्या क्या नुकसान हुआ है और क्या क्या फायदे हुए से भी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण ये जानना है कि अगर नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, और फायदे अगर हुए या आगे चलकर फायदे होंगे तो वे क्यों होंगे। रीजन इज मस्ट, क्योंकि यदि आप एक इनके रीजन समझेंगे तो आप यूं समझ लीजिए कि इस टॉपिक के बहाने आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी दोनों को समझ रहे हैं, राइट। तो आप इसे ऐसा नहीं है कि कम वेटेज देंगे अगर मैंने स्टेटमेंट दे दिया है तो। इसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरी खबर है, न्यूज में भी है, न्यूज़पेपर्स में भी काफी है, दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो कह लीजिए कि असहनीय स्तर तक का हो गया है, उसको लेकर के खबरें हैं। लगातार ऐसा होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने दिल्ली के लिए ज्यादा बुरे होते हैं, और खासकर नवंबर का महीना, क्योंकि जो हरियाणा उत्तर प्रदेश से जो लगा हुआ क्षेत्र है वहां लोग अपने उपज के जो डंठल वंठल बच जाते हैं ना उनको जलाते हैं और उससे भयानक धुआं उठता है और वो धुआं दिल्ली में आता है और फिर पूरे के पूरे वातावरण में छा जाता है। इसको लेकर के एक साल पहले मेंस में प्रश्न भी पूछा गया था कि दिल्ली में क्यों प्रदूषण ज्यादा होता है, राइट। तो इसमें आप देख लीजिएगा जरूर, इस आर्टिकल इससे संबंधित जो भी आर्टिकल होंगे वो भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज फ्रेंड्स, आज के न्यूज में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है, यानी कि कल के न्यूज में, यानी हमारे आज के एनालिसिस में कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं। मित्रों, अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। मुख्य विषय में पर आने से पहले मैं आपको आपको बात बताना चाहूंगा, और वो ये कि आपने इस बीच में खबर पढ़ी होगी कि एक आईपीएस ऑफिसर थे जो फिर से सिविल सर्विस में अपीयर हो रहे थे और मेंस में वो नकल करते हुए पकड़े गए। ही वॉज ऑलरेडी आईपीएस ऑफिसर और 2014 बैच के थे, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि कोई पुराने बैच के थे, वो आईएएस बनना चाहते थे लेकिन उन्होंने रास्ता ये अख्तियार किया। यह एक घटना है और सच पूछे तो एक सीरियस घटना है कि किसी एक जो आईपीएस में है, जिसके ऊपर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी होनी है और जो एक पब्लिक फिगर है, वो इस तरीके से एग्जाम में पकड़ा जाए। तो मित्रों, इस पर हम लोग कभी बात करेंगे, लेकिन यह इस घटना का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह उस समय घटना घटी है जब आपको डेली ऑडियो लेक्चर पुराने पैटर्न पर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। इस घटना का उपयोग आपके लिए जो जनरल स्टडीज मेंस का जो फोर्थ पेपर है बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, बहुत एप्रोप्रिएट होगा। देखिए, इससे कई सवाल अब आप उठा सकते हैं। यूपीएससी कैसे चयन करती है, अगर उसने चयन कर भी लिया तो ट्रेनिंग सेंटर क्या कर रहे हैं, क्या दोष ट्रेनिंग सेंटर का, क्या ट्रेनिंग सेंटर सच में आदमी की नैतिकता को बदल सकते हैं, क्या यूपीएससी सही में इसे जज कर सकती है, या ये समाज का ही कुछ वैल्यू सिस्टम इस तरह का होता जा रहा है कि हमारी जो मानसिकता है वो गड़बड़ाने लगी है? संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है, परिवार की क्या भूमिका हो सकती है, व्यक्ति की अपनी क्या भूमिका हो सकती है ना? सरकार जो एक तरह से लॉज लेकर के आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और जो दूसरे कोड ऑफ कंडक्ट लेकर के आती है, वो किस तरीके के होने चाहिए? क्या वे इसे रोक सकते हैं? रोकने अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? यहां तक आप कह कर सकते हैं कि जो जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका और जो इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके संबंध क्या इसी गठजोड़ के तहत बनते हैं, इसी तरह की व्यवस्था से बनते हैं? क्या वो नैतिक मूल्यों के पतन के लिए जिम्मेदार? तो इस तरह से ढेर सारे प्रश्न उठ रहे हैं, उठेंगे और उठने ही चाहिए। तो मेरा निवेदन केवल यह है कि यदि इस पर आपको कोई भी आर्टिकल पढ़ने को मिलता है तो आप उसे ध्यान से पढ़ें, जो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं उन पॉइंट्स को ध्यान से देखें भी और उन्हें नोट भी कर लें। आज मैं इसी तरह का एक आर्टिकल जो हिंदू में छपा हुआ है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसे आप लोग देख लेंगे। फ्रेंड्स, आइए अब मैं ट्रिब्यूनल पर आता हूं। खासकर ये ट्रिब्यूनल के विषय को मैंने इसलिए चुना है फ्रेंड्स कि आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने, 1 नवंबर की बात है शायद, सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने सरकार से ये जानना चाहा है कि अभी देश में लगभग 1581 शायद आंकड़े हैं, 1581 जो हमारे राजनेता हैं एमएलए एंड एमपी, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं न्यायालयों में और उन सब पर एक तरीके से काफी गंभीर मामले हैं। और ये मुकदमे जब चलते हैं तो उनके पदों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, कोर्ट अभी तो वो दोषी नहीं है, है ना? अभी तो उन एक तरीके से उन पर आरोप लगे हुए हैं, जब तक कोर्ट उन्हें दोषी नहीं ठहरा देती तो कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं होता, तो इस रूप में तो वो बिल्कुल सही है। इससे साल भर पहले, लगभग मार्च साल भर पहले, कोर्ट ने कहा था कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इन पॉलिटिशियंस पर जब केस चलते हैं तो उसे साल भर में निपटा दिया जाए, बहुत जल्दी निपटा दिया जाए, इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए लॉ बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, और अगर वो खुद लॉ को तोड़ने वाले हैं तो उन्हें लॉ बनाने का उतना नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए, तो इनके मामले साल भर में निपटा दिए जाएं, राइट? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, कितने कितने साल लग रहे हैं, और इस बीच में ये अपने पदों पर बने रहते हैं, बकायदे विधायिका के सदस्य हैं, यहां तक कि उसमें कुछ लोग मिनिस्टर्स भी बनते हैं और फिर कार्यपालिका में आ जाते हैं, और जब ये कार्यपालिका में आ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि अब ठीक है जो अपराध हो गया वहीं तक सीमित होते हैं, यहां भी आकर के ब्यूरोक्रेसी के साथ उनके एक अलग तरीके के संबंध होते हैं, यहां भी आकर के वो अलग किस्म के करप्शन को जन्म देते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं, ये लोगों की स्टडी है। मतलब आप सोच करके देखिए कि अभी जब हमारे 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, 2014 में जब पूरे देश में चुनाव हुए थे ऑलमोस्ट, तो हमारी लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है। कल्पना करके देखिए कि जब वो अपना चुनाव का पत्र दाखिल कर रहे थे तो उसमें से 112 लोकसभा के जो अभी मेंबर हैं, अभी जो मेंबर हैं जो जीत कर आए हुए हैं, ऑलमोस्ट 21%, उन लोगों ने बकायदे ये लिखित रूप में दिया है कि उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, गंभीर आपराधिक मुकदमे, जिसमें मर्डर के भी हैं, हत्या की कोशिश के भी हैं, कम्युनल सांप्रदायिकता फैलाने के हैं, किडनैपिंग के हैं, सोचिए, और यहां तक कि विमेन के अगेंस्ट क्राइम करने के भी हैं, इस तक के मामले हैं, लेकिन वो चलते चले जा रहे हैं। तो अब कोर्ट ने ये जानना चाहा है कि आपने इस बारे में क्या किया है। तो मित्रों, वहीं से मैंने ये न्यायाधिकरण का टॉपिक उठाया है, क्योंकि न्यायालय का ये कहना था कि आप इनके लिए, फिर अगर आप अपने रूटीन के कोर्ट से नहीं कर सकते हैं तो आप अलग से कोर्ट बनाइए ताकि वहां इनके इनके मामले जल्दी निपटें। फिर इसी को आधार बनाकर मैं आप थोड़ा सा आपको ट्रिब्यूनल के बारे में बताता हूं, है ना? इस पर आपको अखबारों में पढ़ने को मिल जाएगा। देखिए, बेसिकली जो ट्रिब्यूनल है, ये ट्रिब्यूनल है क्या? इसको सामान्य तौर पर कहा जाता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि जो विवाद है, विवादों के समाधान के लिए एक वैकल्पिक मशीनरी, एक वैकल्पिक मशीनरी, यानी कि जो हमारे न्यायालय हैं वो न्यायालय विवादों का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, राइट, उसके बहुत से रीजन होते हैं, और सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बहुत से मामले बड़े टेक्निकल किस्म के होते हैं और हमारे न्यायाधीशों से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को जानते हों। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अब वो पर्यावरण के ऊपर है। सेबी अपील जो न्यायालय है, अब वो आर्थिक मामलों पर है और बहुत ही टेक्निकल चीज है। तो ऐसे मामलों को के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की व्यवस्था हुई कि उसमें टेक्निकल जानकारी के भी लोग होंगे और उन मामलों को जल्दी निपटाया जा सकेगा। तो खासकर जो ट्रिब्यूनल हमारे यहां आए फ्रेंड्स, उसके चार सबसे बड़े कारण थे। पहला कि जो मामले होंगे उन मामलों को बहुत ही एफिशिएंसी के साथ स्वतंत्रता पूर्वक निपटाया जा सकेगा। स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब है, और एफिशिएंसी का मतलब यहां है कि उस विषय की जानकारी के साथ, यानी कि केवल एक कानून जैसा कह रहा है वैसा कह दिया जाएगा। दूसरा यह है कि जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसका सही उपयोग किया जा सकेगा। तीसरा यह है कि जल्दी से मामला निपट जाएगा, स्पीडी रेजोल्यूशन आप कह लीजिए, अदरवाइज आप देख रहे हैं कि मामलों को कितना लंबा वक्त लग जाता है। तीसरा यह था कि वो सस्ता भी होगा, चीप भी होगा, ये इनकी विशेषता होती है। नो डाउट फ्रेंड्स, इसका एक पर्पज ये तो था ही कि हमारे न्यायालयों पर चूंकि काम का बोझ बहुत अधिक है तो उनके ऊपर उस बोझ को कम किया जा सके और ये सारे के सारे मामले ट्रिब्यूनल्स के द्वारा निपटाए जा सके। अब आप देखिए कि थोड़े से जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनको न्यायालय नहीं कहा जाता है, इनको न्यायालय नहीं कहा जाता है, जबकि ये काम न्यायालय जैसे कर रहे हैं। यहां जो बारीक अंतर है वो आपको समझ लेना चाहिए फ्रेंड्स, कि जो कोर्ट है हमारे, जो न्यायालय है, वो स्ट्रिक्टली सीआरपीसी का नाम आपने सुना है, आईपीसी का नाम आपने सुना है और इंडियन एविडेंस एक्ट, वो इसके तहत काम करते हैं और स्ट्रिक्टली इसके तहत काम करते हैं। जबकि जो ट्रिब्यूनल है वो इसी तक लिमिटेड नहीं है, वो इससे हट करके भी काम कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो ट्रिब्यूनल है वो सामान्यतया एक जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है ना, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, उसको लेकर के चलते हैं। एक बात आपने और भी देखा होगा कि जो न्यायालय जब अपने फैसले देते हैं तो हम उनके फैसलों को क्या कहते हैं, कि जजमेंट दे दिया, डिग्री दे दी, कन्विक्ट कर दिया, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो ट्रिब्यूनल जो फैसले देते हैं तो उनको हम कहते हैं अवार्ड्स शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये इनमें एक बारीक अंतर है और मित्रों मुझे लगा कि ये बारीक अंतर आपको जानना चाहिए, राइट। वक्त मुझे इतनी ही बात कहने की फ्रेंड्स इजाजत दे रहा है। एक बात आपको मैं और बता दूं कि हमारे जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ये जो कोर्ट का जो अपना एक हायरार्की है, उनका जो अपना पूरा का पूरा सिस्टम है, उनसे अलग होते हैं और ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर, इनके अपॉइंटमेंट्स नहीं होते उसी रूल्स रेगुलेशन से, ये नहीं चलते हैं जिस रूल्स रेगुलेशन से हमारे कोर्ट चलते हैं। और मित्रों इसको लेकर के अब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं और उन प्रॉब्लम्स का एक बहुत अच्छा लेखा जोखा आज बिजनेस स्टैंडर्ड में सोम शेखर सुंदरेशन जी ने दिया है, तो उनका आर्टिकल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, प्लीज इसे आप, बेहतर होगा कि डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड में रख लें। उन्होंने बताया है कि इस ट्रिब्यूनल्स के कारण किस तरीके की समस्याएं पैदा हो रही हैं और क्या क्या सिचुएशन बन रही है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो मैंने जो बात अभी आपको बताई है उसका ये कह लीजिए कि एक नेक्स्ट, उसका एक्सटेंशन है और मूल बात यही है। अगर एग्जामिनेशन में कहीं कोई बात पूछी जाएगी तो वो इस आर्टिकल पर बेस्ड होगा। मैंने जो आपको बात बताई है वो समझने के लिए बताई है ताकि आप कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स इनको अलग अलग करके अच्छी तरह से देख सके, समझ सके, दोनों को मिक्सअप न करें। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त भी मैं कुछ आपको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप सब देख लेंगे। मित्रों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। तो ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, आकांक्षा तिवारी जो कांकेर छत्तीसगढ़ से हैं, सूरज यादव, सोनू पांडे गोंडा उत्तर प्रदेश से, अभिषेक सिंह, प्रत्यूष मोहन, उमेश सिंह, आशुतोष कुमार औरैया उत्तर प्रदेश से, चंद्र कुमार अग्रवाल गुना मध्य प्रदेश से और अभय राज सिंह भोपाल से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।